ओम शांति। सभी सीट पर सेट हो गए ठीक से। हम सभी के बीच में हमारे आदरणीय सतीश भाई बिफोर टाइम पहुंचे हैं, ये हमको शिक्षा देते हैं, प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी एक हाथ की ताली से उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। सतीश भाई जी आज हम सभी को बताने वाले हैं कि जो भी हम लौकिक अलौकिक कार्य करते हैं, तो वो कार्य करते समय, कार्य करने के पश्चात हमारे अंदर निमित्त भाव और निर्माण भाव कैसे पैदा हो, उसकी विधि क्या है, जिससे हमारे अंदर अहंकार भाव न उत्पन्न हो, तो वो हम सभी को आज बताएंगे। उनका परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। यूं तो आप सभी जानते हो, बाबा के टर्न में जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, तब भी और आज भी बाबा के टर्न में आप उनके द्वारा क्या सुनते हैं? कौन सा ग्रुप है? मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा आप कितने सुंदर गीत सुनते हो। आपका नाम, लौकिक नाम पूरा सतीश चंद्र श्रीवास्तव है। आपका लौकिक जन्म 1960 में सुल्तानपुर जिले में हुआ और अलौकिक जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश में आता है, और आजकल उसको क्या कहा जाता है? अयोध्या। तो उसके पास के एक रेवना गांव में आपका जन्म हुआ और वहां ही आपकी आध्यात्मिक पालना हुई। संपूर्ण परिवार आपका ज्ञानी है, आपकी बहनें भी हैं, भाई भी, माता पिता सभी बाबा के बच्चे हैं। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई 12वीं तक की, यूं तो पढ़ाई में बहुत ही मेधावी थे और फर्स्ट नंबर में आप पास हुए 12वीं में। परंतु आपकी अध्यात्म प्रति बहुत रुचि होने के कारण आपने आगे पढ़ाई नहीं की, वो लौकिक पढ़ाई छोड़ दी और आपने फैसला किया कि मानवता की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का। आप पिछले 40 वर्षों से यहां मधुबन में रह रहे हैं। आरंभ के 30 वर्षों में आपने विशेष भोजनालय की सेवा ली, जिसमें आपका ये बहुत ही बड़ा भाग्य रहा कि हमारे यज्ञ की जो महान विभूतियां, हमारी दादियां, वरिष्ठ भाई, उनके लिए आप विशेष भोजन बनाते थे। मुझे याद है, मैं जलंधर से आती थी पंजाब से हमारे बड़े बहन जी के साथ में, तो उनकी कुछ परेजियां आदि होती थी तो इनके पास से सब्जियां लेके जाती थी। सन 2000 से RERF की जो कला एवं संस्कृति प्रभाग के आप मुख्यालय संयोजक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जब से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी से आपको गीत संगीत में भी विशेष अभिरुचि रही है। मुख्यालय के आप विभिन्न कार्यक्रमों में मधुरवाणी ग्रुप के प्रणेता एवं प्रभारी होने के साथ साथ अनेक सेवाएं समय प्रति समय प्रदान करते आए हैं, जिसके फलस्वरूप देश की अनेक जानी मानी हस्तियों द्वारा आपको सराहना प्राप्त हुई है। आपने लगभग 5000 से भी अधिक गीतों की रचना की है और जिसमें लगभग 600 जितने गीतों को तो बॉलीवुड के गायक, पार्श्व गायक और गायिकाओं ने गाया है, जिसमें खास भारत की नाइटिंगेल कौन, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, अनुराधा पौंडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, दिलराज कौर, श्रेया घोषाल, और गायकों में महेंद्र कपूर, यशुदास, जगजीत सिंह, सुरेश वाडेकर, अनूप जलोटा, मनहर उदास, पंकज उदास, सोनू निगम, उदित नारायण, मोहम्मद अजीज आदि आदि ने आपके गीतों को गाया है, जिनको हम सुनते हैं, योग लगाते हैं, सेवाओं के प्रति यूज करते हैं। धन्य हैं आप। आप कवि, लेखक, गीतकार, संगीतकार, वक्ता, मंच संचालक के रूप में प्रभु प्रेमी राजयोगी भी हैं, और आपकी एक विशेषता है, आपने जब से बाबा के बने हैं कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया है। ये खास प्रेरणा आपसे सभी लेंगे। मुख्यालय में आने वाले देश विदेश के अनेक ऐसे भाई बहने जिनको हिंदी न बोलना न पढ़ना आता हो न समझ आती हो, ऐसे लोगों को आपने हिंदी का बहुत ही सुचारू रूप से प्रशिक्षण दे करके उनको हिंदी बोलना कर दिया। आप में यूं तो मधुरता, सरलता, संतुष्टता आदि गुण सहज और सरल रूप से विद्यमान है। विदेशी भाई बहने आपको बड़े प्यार से, आपका नाम यूं तो सतीश भाई है, अब वो कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सतीश भाई, क्योंकि उनका ये वास्तविक गुण है, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आप दिव्य धारणाओं समेत मन वचन कर्म से भारत वर्ष सहित संपूर्ण विश्व को स्वर्ग बनाने हेतु कृत संकल्पबद्ध हैं। ऐसी महान विभूति आप हम सभी के बीच में पधारी हैं। फिर से एक हाथ की ताली का हम उनको स्वागत देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमको वो बताएं कि कैसे निमित्त और निर्माण भाव जीवन में लाने की विधि क्या है। आदरणीय राजयोगी सतीश भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। एक गीत याद आ रहा है, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण, सदा के हे साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे, तुम्हारे ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे, दिल के दिलाराम दिल से है कहते, दिलो जहां से तुझ पे है बाबा समर्पण। ये जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये जीवन के नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए हम पे एहसान इतने हैं तुमने कि जीवन भी देकर चुका न सकेंगे, जीवन भी देकर चुका न सकेंगे। ये मैंपन, मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प, हर बोल अर्पण है धड़कन। सांसों के स्वामी, जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार है तुमको अर्पण। तू ही आस विश्वास बल है भरोसा, तू ही आस विश्वास बल है भरोसा, तू ही बाबा संकल्प साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने ऐसा दर्पण। सांसों प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, इस नैया की पतवार तुमको अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण 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 समर्पण। एक समर्पण भाव में सब कुछ समा जाता है, पूरे ब्राह्मण जीवन की फिलॉसॉफी समझ में आ जाती है। तो सर्वप्रथम आप सबको बधाई देना चाहता हूं, मधुबन में भट्टी के प्रारंभ में सीजन के सेवा की सीजन की शुरुआत आपसे हुई है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विशेष रत्नों का, जो मधुबन में भट्टी करने का चांस पाए, मधुबन में आने वालों का, संसार की सबसे श्रेष्ठ जगह पर, सबसे ऊंची जगह पर, ऊंचे स्थान पर भी ऊंची जगह पर, बाप दादा जहां पर बैठे, स्वयं भगवान बैठकर यहां पर महावाक्य उच्चारित करते रहे, और वो धरणी जो बाप दादा की कर्म भूमि, तपो भूमि, चरित्र भूमि रही, देवों की रंग भूमि, शक्तियों की सेवा समर्पण भूमि, उस स्थान पर आने वाले आप सब विशेष आत्माओं का, और आज की मुरली के अनुसार अपने ऊपर रहम करने वालों का, बाप जो मत देते हैं उस मत पर चलने वालों का, अपार हर्ष में अपार प्रसन्नता में रहने वालों का, माया के श्राप से बचने वालों का, माया का श्राप क्यों लगता है इस बात को समझने वालों का, और श्रापित आत्मा की गति क्या होती है उस बात को समझने वालों का, बाप पढ़ाई और ज्ञान रत्नों का कभी निरादर न करने वालों का, अपनी मत पर न चलने वालों का, माया की श्राप से बचने वालों का, और आसुरी चलन न चलने वालों का, दिव्य गुणों को धारण करने वालों का, कोई बदचलन चलने वालों का, अपना और दूसरों का कल्याण करने वालों का, बाप के दिल पर चढ़ने वालों का, एक बाप की तरफ ही दृष्टि रहे और कहीं भी देखे नहीं इस बात का ध्यान देने वालों का, और देही अभिमानी बन करके माया के धोखे से बचने वालों का, सर्विस में भागदौड़ करने वालों का, सर्विसबल और आज्ञाकारी बनने वालों का, कुचल न चलने वालों का, और आज के वरदान के अनुसार क्या प्रकृति जीत बनने वालों का, मैं मास्टर प्रकृति जीत बनने वालों का, जो विशेष क्या करें, जो तत्क्षण वहीं पर प्रकृति के हलचल को स्टॉप करने के लिए फुल स्टॉप की स्टेज पर स्थित रह करके प्रकृति की हलचल को सेकंड में स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपतियों का, और निर्विघ्न राज अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनने वालों का, और विशेष करके जो बाप दादा के इशारे हैं कि कंबाइंड स्वरूप में स्थित रह करके कि भगवान जो है वो भी जो बीज रूप सृष्टि का बीज रूप है वो भी हमारे बिना रह नहीं सकता है, हम उसके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता है ना। इस नशे में रहने वालों का आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाइयां। सारे ईश्वरीय ज्ञान का और पुरुषार्थ का सार है निमित्त और निर्माण बनना। निमित्त भाव एक ऐसा शब्द है कि अर्जुन ने केवल निमित्त भाव धारण किया, वो रथ में बैठा है, लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सारा काम भगवान कर रहे हैं, उसको निमित्त बनने के कारण उसको सारा श्रेय मिलता है। अर्जुन माना अर्जन करने वाले। निमित्त बनना क्या है? निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट, निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट, निमित्त माना मीडियम बनना। यहां से कोई दे रहा है, आपके पास आ रहा है और आपको दूसरे को देना है, आपका इसमें कुछ भी नहीं, आ रहा है तो आने दो और जा रहा है तो जाने दो, बीच में आप हैं। बाबा ज्ञान दे रहे हैं, आपको निमित्त बना रहे हैं, बच्चे इस ज्ञान को सप्लाई करो, अपने पास मत रखो, लो धारण करो और आगे बढ़ाओ। अगर भगवान के ज्ञान को लेकर के अगर हम कहें कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत योग्य हूं, तो इसका मतलब यह है कि हम परमात्मा की अमानत में खयानत डालते हैं, बहुत बड़ी खयानत है। निमित्त बनने का श्रेय बहुत बड़ा है। हम सबको निमित्त भाव, परिवारों में रहते हुए, घरों में रहते हुए, सेवा केंद्र पर रहते हुए, निमित्त भाव को अगर हम समझ लें तो हमारे ऊपर कभी भी न तो कोई दुश्चिंता होगी, न तो कोई फिक्र होगी, न तो तेरा मेरा का झंझट होगा, ना कोई भी प्रकार का कोई क्लेश होगा, ना तो कोई मानसिक कष्ट होगा, ना तो कोई शारीरिक बीमारियां ही होगी। निमित्त बनने का बहुत बड़ा श्रेय है। बड़ी दादी जी और दीदी मनमोहिनी जी बाबा के अव्यक्त होने के बाद निमित्त बना दिया, ऐसी निर्माणता से दादियां रही। मैं जब आया 78 में मधुबन में तो सारी दादियां थी, सब दादियां थी। उन दादियों को देखते थे, इतनी मतैक्यता दुनिया में, ऐसा दुनिया में कहते हैं अगर जहां दो बहनें भी हो वहां बड़ा मुश्किल होता है, आवाज ना हो ऐसा होता नहीं है ना, दुनिया में कहते हैं जहां है? इनको तो ये है ही नहीं ना वो दुनिया में कहते हैं जहां कुछ माताएं हो वहां आवाज ना हो ऐसा होता नहीं, और हमारे यहां की माताएं वो शांति की दूत है। कितना बड़ा चेंज है, भाई तो ताली बजा दे बहनों के लिए तो निमित्त बना के बाबा ने दादियों को ऐसा निमित्त भाव से रखा कि हमने देखा बड़ी दादी को इतनी विनम्रता, इतनी विनम्रता कि ए टू जेड सम्मेलन होना है, कॉन्फ्रेंस, उसमें सेवाधारी कौन कौन है, सेवाधारियों को भी दादी जान रही, और सबसे बड़ा जो गेस्ट है वो भी, उसको भी जान रही, उसको क्या देना है वो भी, और भंडारे के लिए मीनू क्या बनाना है वो भी, नीचे से ऊपर तक सब काम करना, एक एक का ख्याल करना। मैं यहां बैठता था, आंगन में दादी बैठी होती थी, आगे आ रहे हैं, सतीश इधर आओ, बुला लिया, बाबा के लिए गीत लिखा है? हमने कहा जी दादी लिखा है। तो कब सुनाओगे? 18 जनवरी के आसपास। हमने कहा दादी जब आप कहें। कहा ठीक, कल सवेरे 4 बजे मेरे कमरे में आ जाना। तो वही जो मम्मा का कमरा है, बाबा के कमरे के बगल वाला रूम, वहां पर जाते थे, दादी को सुनाते थे। दादी कहती थी और सुनाना है, और है? हमने कहा दादी है तो बहुत है। कहा एक और सुनाओ, और सुनाओ। सुनाने के बाद कहती थी अभी मैं मुरली सुनाने आ रही हूं, तो मुरली से पहले जो गीत बजता है उसकी जगह तुम एक एक गाना अब से लेकर 18 जनवरी तक रोज सुनाओ। तो मैं सुनाता था, फिर सुनकर सबको अच्छा लगता था। कहती थी अब इसकी एक कॉपी बनाओ, इनको दो, जगदीश भाई को दो, निर्भय भाई जी को दो, रमेश भाई को दो, हमको दे दो, और एक कॉपी जो है मुंबई में भेज दो फलानी बहन के पास, चाहे योगिनी बहन के पास, चाहे देव्या बहन के पास, वहां भेज दो। तो कॉपी बना के इतनी कटनी छटनी सुनना, सबके पास होना, सब देखते थे, उसको करते थे। लेकिन मैं अनुभव करता था कि दादी में हर एक प्रकार की कला थी। कला क्या है वो भी, एक गाना बन के आया, उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं। तो जब बन के आया तो दादी इतनी मगन हो जाती थी, मैंने कहा गाने तो बहुत हैं और दादी इसी गाने क्यों पसंद कर रही है। और जब वो मैं सुनाता था या सुनता था जब भी, तो मुझे उसकी बारीकी, उसकी समझ समझ में आई, तो लगा कि दादी को कितना अच्छा लग रहा है, उसकी फीलिंग्स, वर्डिंग्स, उसका जो म्यूजिक है, जो संगीत है, माना दादी को हर क्षेत्र में देखा कि दादी इतनी प्रवीण थी, इतनी एक्सपर्ट थी, इतनी जो है उसकी नजाकत को, उसकी समझ रखती थी। लेकिन कभी भी दादी को किसी बात का अहंकार नहीं है, हमेशा नीचे बैठना, बाबा आए हैं, ओम शांति भवन है, दादी एकदम नीचे बैठी, ऐसे बैठना जैसे मैं बैठा, इस तरह बैठना। दादियों का इतना विनम्र व्यवहार, दादियों में बड़ा मिला के रखे, 350 कम से कम यहां पर जितनी भी दादियां थी, उन दादियों के रहते हुए उनमें कभी भी कोई बात का झगड़ा नहीं होता था। आप सोच लो इतनी बहनों का, और समर्पित भाव से यहां यज्ञ में है, सबको इतनी सुविधा तो नहीं मिल सकती है, लेकिन सब संतुष्ट रहे, सब मिलके रहे, वाह बाबा वाह, यही मन करता है गुण गाते रहे, वाह बाबा वाह, यही गुण गाने का मन करता है, वाह दादियां वाह बाबा, किस तरह से निमित्त भाव से दादियों ने काम किया, वो सब सिखाया। बड़े भाइयों में भी कैसा भी रहा, लेकिन बाबा ने सबको जोड़ के रखा, नहीं तो कहीं भी कोई संगठन में 2-7 के बराबर के लोग रह नहीं सकते। और अपने हाथ बहुत बड़ा ही गजब का है, दादियां थी तो कभी भी अपने आप को हेड समझती नहीं थी, जब हेड नहीं समझती थी तो कोई हेडेक नहीं था, क्योंकि जहां हेड होता है वहीं हेडेक होता है, न हेड कोई न हेडेक कोई, कोई बॉस नहीं था, यहां तो कोई बॉस भी नहीं, क्योंकि जहां बॉस होते हैं वहां बांस आती है, और जहां कोई गुरु होते हैं वहां गुरगुर गुरगुर होता रहता है, वहां आपस में झगड़ा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, यहां तो कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। हंसी में सूरज भाई को गुरु जी कुछ लोग बोल देते हैं, बड़े आगे अधिष्ठाता रहे हैं, शुरू शुरू में यज्ञ में थे, किचन में, मैं भी किचन में साथ में आया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, एक एक चीज सीखने को मिला। वो गीत लिखते थे और हम दिखाते थे, मैंने देख लिया उनकी डायरी में, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा है, संसार की नैया को पार लगा देंगे, तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा मधुबन की इस चमन की तुम बहार हो, ऐसे ऐसे गीत की रचना सूर्यभाई खुद ही लिखे। एक बार अभिनंदन तो कीजिए। और हमें गीत गाने का, चूंकि किचन में छोटा ग्रुप था उन दिनों, कल्चरल प्रोग्राम तो होते नहीं थे, कोई कल्चरल का ग्रुप तो था नहीं आजकल के मधुर वाणी की तरह, तभी सब मिलकर के सूरज भाई और हम लोग मिलके टोपी ओपी पहन के यहाँ पर चुनरी वगैरह बांध करके, और ताली पीट पे, ताली भी पीटना नहीं आता था, हम लोग कव्वाली करते थे, तो बड़ा छोटा सा ग्रुप होता था, वो लिखते थे और हम लोग गाते थे। बाद में जब देखा कि ये अच्छा गा रहे हैं, अच्छा लिख लेते हैं, तो इन्होंने अपना किनारा कर लिया, हम लोगों को आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे जो निमित्त आत्माएं बन गई बहुतों को जीवन बनाने के लिए, वह आत्माएं इस सृष्टि पर सबके द्वारा सम्माननीय हो जाती हैं, गायनीय बन जाती हैं, पूजनीय बन जाती हैं। तो निमित्त बनने का बहुत बड़ा श्रेय, लेकिन निमित्त बनने में अहंकार भी आ जाता है। कई सेंटर्स की बहनें जो थोड़ा, सबके लिए नहीं कहता हूं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा भी हो जाता है, मैं निमित्त बनी हूं ना, तो निमित्त बनने का जो अहंकार है वो बहुत नुकसान कर देता है, उससे बचने की जरूरत है। इसलिए बाबा बार बार हम सबको कहा करते हैं, बच्चे निमित्त भाव रहे, निर्माण भाव रहे, निर्माण करो और निर्वाण धाम में चलो। निमित्त निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये चारों शब्द बड़े काम के हैं। जितना जितना हम निमित्त बने रहेंगे उतना ही हम अहंकार से शून्य होते जाएंगे। निमित्त बनना यही है। आज जैसे मधुरवाणी ग्रुप होता है, कल भी अमित शाह जी आए थे, गीत गाए, और कितने मंच पे आते रहते हैं रोजाना। अभी जो गीत बज रहा था, ये जो गीत बजा, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, ये सब जब लिखता था तो मुझे मालूम नहीं था आगे चल करके मैं बैठ के सुनूंगा और आप भी सुनेंगे, ये सब होगा। तो उसी रो में आए, बाबा की याद में बैठे, बन गया झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। फलक से हम दिखा रहे हैं, झलक से यही कह रहे हैं, कराने वाला करा रहा है, करणहार हम किए जा रहे हैं। निमित्त बनने हैं, निमित्त बनने का क्या अहंकार करना है, किस बात का अहंकार करना है। ज्ञान बाबा का बनवा रहा है, वो बुलाया उसने हमको यहां पर, अपना भी बनाया, बनाने की समझने की समझ रखी, और वही टाइम पर टच भी करता है, वही लिखाता भी है, वही मौका भी देता है, वही गवाता भी है, बनवाता भी है, वही सफलता भी देता है, वही सम्मान भी दिलाता है। और मैं कहूं वाह मैंने किया, तो ऊपर से हंसता है वो, वाह क्या बात, कराने वाला तो मैं हूं, करता तो मैं हूं, और ये अपनी कालर ये ऊंचा करके भागता है। किस बात का अहंकार, किस बात का। तो सेवाओं में और घरों में रहकर कभी भी ये भान आए कि मैं घर का मुखिया हूं, मैं घर का बड़ा हूं, घर की इज्जत मेरे हाथ में है, इनका कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरे घर का नाम बदनाम होगा। अगर कोई मुखिया समझता है तो समझो अपने लिए वो सबसे ज्यादा मुसीबत मोल लेकर रखता है। निमित्त भाव बहुत जरूरी है। आप सेवाओं में रहते हैं, लौकिक प्रवृत्ति में रहते हैं, ऑफिसर हैं, आपके अंदर में बहुत बड़ा है, बड़ी टीम है, बहुत बड़े वर्कर, बहुत वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर निमित्त भाव को हम निकाल दिए और वहां पर इंचार्ज बन गए, वहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए और खुद अपने आप को मुखिया समझ लिए, प्रधान समझ लीजिए, तो जिसे अपने यहां दही बड़ा बनता है ना, बड़ा, वो बड़ा जिसे बनता है बड़े मुश्किल से बड़ा बनता है, वैसे ही बड़ा बनना माना, बड़ा बनना माना बड़ा कहावना और बड़ा दुख पाऊना। इसलिए हमेशा निर्माण बनकर रहना, यही ज्ञान सिखाता है। तो एक तो निमित्त बनकर के बाबा और कहा करते थे जिस सामने बैठे हैं, निमित्त आत्माएं बैठी है ना, ये निमित्त आत्माएं बैठी है ना, तो निमित्त बनने के कारण आज दादियां हम सबके लिए सम्माननीय हो गई। और हमको भी जितना निमित्त भाव में रह करके हम अपनी निमित्त बनी हुई दीदियों को, बहनों को हम जितना सम्मान देते हैं उतना ही हम सम्माननीय बनते हैं। मैं दादी जी का भोजन बनाता था, दादी गुलजार दादी का जब ऊपर थी 8 साल तक भोजन बनाया, मैंने कहा दादी कि आपको देखते हैं तो बाबा याद आता है, याद में बैठते हैं तो ही आप सामने आ जाते हैं, और आपको जब देखता हूं तो आप योग में मगन रहते हैं, जब देखो तो आप बाबा की याद में खोए रहते हैं। दादी आप में तो बाबा और बाबा में आप दिखाई पड़ते हैं, बाबा में आप में तो कोई अंतर दिखाई पड़ता नहीं, जब भी देखो तो दादी आप ऐसे बैठी होती मगन, मीटिंग में बैठी है बड़ी मीटिंग में, दादी हल्का सा कान में लगाया ऐसे बैठी है, ऐसे करी जिससे लगता है कि किसी ने कहा दादी, बड़े मुश्किल से दादी देखती है तो लगता है जैसे यहां है ही नहीं। रतन सिंह दादी अभी इतने समय तक रही जैसे हैं, भी मुस्कुरा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जैसे यहां रहते भी नहीं। बड़ी दादी भी बहुत समय तक दिखाया कि मैं हूं और नहीं भी हूं। इस तरह से दादियों ने निमित्त भाव से, निर्माण भाव से जो आज हम सबकी सेवा की, जो आज हम सबको महान बनाया, एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ा त्याग था, बहुत बड़ी तपस्या थी। सारी मेहनत करो तभी, मेहनत करने के बाद क्या होता है, आप सेवा करके कहीं आइए और आपको कोई पानी ना पूछे, कितना मन को दुख होता है कि मैं इतना करके आया तुझे। अच्छा चलो आपको ना पूछा गया लेकिन जो नहीं करता है उसकी जगह पर आपके आगे उसको सम्मान किया जा रहा है, तो कहता भाई हमारी बेइज्जती तो ना करो, उनको इज्जत करके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा ख्याल में आता है। तो इसलिए निमित्त भाव का मतलब है निरहंकारी बनना, कोई अहंकार ना हो। बाबा ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके हमारे आगे निराकार तो दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन अपने द्वारा बाबा ने निराकार को साकार करके दिखाया और अपने आप को इतना छिपाया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बच्चे ये तो दलाल है, ये तो बीच में है, इसमें फंसो नहीं, जो इसमें फंसा वो मर गया, इस तुमको इस बाबा को याद ही नहीं करना है, इतना अपने आप को छिपाया तब बाबा को प्रत्यक्ष कर पाया। अगर बाबा थोड़ा भी आगे आते तो ब्राह्मण तो क्या, लौकिक दुनिया वाले तो अभी भी, अब कल अमित शाह जी आए थे तो यही बोलते थे दादा लेखराज धन्य धन्य है जिन्होंने इसको शुरू किया और वो ब्रह्मा की पदवी पाए, सचमुच वो ब्रह्मा के योग्य थे, तो लोग तो यही जानते हैं कि दादा ये लेखराज का काम है, लेकिन बाबा ने अपने आप को इतना गुप्त किया निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, कि बाबा को इतना मान दिया कि बाबा के गुण गाते गाते बाबा समान गुणवान बन गए, बाबा के गुण गाते गाते बाबा को देखते देखते बाबा जैसे बन गए, हमेशा आगे बढ़ाया। हम सब भी अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिसको याद रखें, सवेरे उठे तो स्वमान एक पक्का कर ले, अभिमान को नष्ट करता है हमारा स्वमान, जितना हम स्वमानधारी बनेंगे उतना ही हम अभिमान से मुक्त होंगे। स्वमान क्या हो कि उठते ही हमारी पहली दृष्टि बाबा पर जानी चाहिए, पहली दृष्टि बाबा पर, और बाबा को थोड़ी देर के लिए लगभग 3-4 मिनट तक बिना कोई मोमेंट के बाहर जाने के वहीं जहां पर है बिस्तर पर ही, पहले शुरू के जो संकल्प है फर्स्ट संकल्प का बीज उसको पक्का कर ले कि मैं अवतरित हुई महान आत्मा हूं। सबसे पहला संकल्प आए मैं महान हूं और मैं मेहमान हूं, मेरा अवतार हुआ, पहला संकल्प ये हो, मैं महान हूं और मेहमान हूं। और ऐसे करें, वरदानी मुद्रा में ऐसे बैठे, सब कोई ऐसे बैठे, ऐसे संकल्प करें, थोड़ा ठीक से बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ सकेंगे, ये बहुत अच्छा है, ये बैठा योगी का आसन बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम। कल दीदी से बात हो रही थी तो जैसे बताया कि अमृत वेला मेरा बड़ा प्रिय विषय है, जब से आया मैं इसी जगह पर लगभग 20 साल तक यहां बैठ के योग कराया, और सवेरे जब बैठता हूं तो मुझे इस बात की फीलिंग होती है कि मैं संसार के सबसे ऊंची जगह पर बैठा हूं, और यहीं पर बाबा बैठते थे, हम लोग मिलते थे यहां पर आकर के बाबा के पास, यहां बैठ कितनी बार मिले, तो ये इस फीलिंग में कि ये सबसे ऊंची जगह पर है, सबसे महान जगह पर है, मेरा साक्षात्कार हो रहा है, सारी दुनिया की आत्माएं हमें देख रही हैं, मुझे ऐसे बैठना, तो ऐसे करके मैं बैठता था, बैठता हूं तो ऐसी दृष्टि में कि बिल्कुल जैसे कि आंखें ये बंद ही नहीं होने वाली, ऐसे खुल के, आप भी ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करें जैसे कर। और ऊपर सामने देखें बाबा को, जैसे बाबा को देख रहे, ऐसा लगे जैसे कि मैं पूरा ब्रह्मांड को पूरे दोनों हाथों में भरने वाला हूं, बाबा को भी अपनी भुजाओं में भर रहा हूं, और फील करें कि ये सबसे सुहाने है पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए, गगन झुक गया वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी जैसे जमी रह गई है, रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई है, हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए। कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ छोटे छोटे प्रयोग करके अपने आप को सवेरे जब याद में बैठे तो आज से संकल्प करें, जितने भाई बहने सुन रहे हैं और जो भी सुनेंगे बाद में भी, उनको संकल्प लेना है कि संगम युग में जब बाबा हमको निमित्त बना करके यहां बिठाता है, या निमित्त बना करके हमको सवेरे विश्व सेवा के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जब हम सवेरे याद में बैठते हैं तो केवल ये नहीं कि हम फर्जदाई करते हैं कि बाबा ने अमृत वेला उठने को कहा है और उठ के हम केवल बैठ गए, नहीं, उस समय पर बाबा ऐसे बच्चों की तलाश करते हैं जो बच्चे अशरीरी बनकर के, निरहंकारी बनकर के, इंस्ट्रूमेंट बनकर के, शांत और एकांत में बैठ करके बाबा के हवाले हो जाते हैं, बाबा से सकास लेते हैं, बाबा उनको ले जा करके उनके माध्यम से अपने भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं, दुखियों के दुख दर्द दूर करते हैं, अशांति की शांति दूर करते हैं, अशांति की अशांति दूर करते हैं, और उनकी मदद करते हैं, उनको साक्षात्कार उसके माध्यम से कराते हैं, ये कराता बाबा है, लेकिन निमित्त आपको बनाता है। तो सवेरे आपको बैठकर केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त बन के बैठ जाना है, अशरीरी बन के बैठ जाना, बाबा बोलिए क्या सेवा है, बाबा आपने बुलाया और मैं हाजिर हूं, हुजूर हाजिर हूं, बस निमित्त बन जाओ सवेरे, बाबा आपकी बहुत सेवा आपसे लेता है, ठीक है ना। तो सवेरे सवेरे अमृत वेले बैठे, अशरीरी बन करके बैठे और ऐसे फील करके बैठे जैसे मैं बाबा में समा गया हूं और बाबा मुझ में समा गए, अब बाबा के हवाले हो गया हूं, बाबा अपने आप विश्व सेवा कर रहे हैं, और बाबा के इस प्यार में अपने आप को इतना संभाले कि इन आंखों में नींद ना हो, बल्कि इन आंखों में प्रेम के आंसू आए, प्रेम के आंसू आए, जब भी आप बाबा के गुणगान करेंगे और बाबा की महिमा को समझेंगे तो आपके आंखों से प्रेम के आंसू निकलेंगे। और हम सबका अनुभव है कि जब से ज्ञान में आए, शुरू शुरू में आए, तो जरूर हमारे आंख में आंसू आए, प्रेम के आंसू आए, आए ना? किसको बाबा के आंसू आंख में आंसू आए? बाबा के प्रेम में सबको आए। हमने बाबा को खूब रो करके बाबा का धन्यवाद किया, अपने भाग्य की सराहना की, अपने ईश्वरीय जीवन में पदार्पण करने की हमने स्वयं को बधाई दी। कब दी? शुरू शुरू से। आज वो इतने आंसू नहीं आते, आज ये करना है वो करना है, आप खूब झुटका खाते हैं, आंखों में नींद भरा होता है, लेकिन अब आंखों में आंसू कम आ गए, वो आने चाहिए। हम कम से कम सवेरे बैठे, हमारी बुद्धि भटक रही है, बाबा की याद नहीं आती है, तो हम बाबा को कहें, बाबा आप तो निरंतर योगी बनने के लिए कहते हैं, और हम एक घंटे के लिए अमृत वेला बैठते हैं, वो भी सोल्ट होते हैं, उसमें भी नींद आती है, सारे दिन तो हम अपने काम में बिजी होते हैं, एक घंटा मुरली सुनने के लिए जाते हैं और जैसे मुरली सुनी हुई तो मुरली में भी नींद आती है। तो जहां प्राप्ति करना है वहां तो नींद आती है, और जहां कुछ भी नहीं प्राप्ति हो रही है वहां पर हम जागे रहते हैं। बाबा ऐसी कमाई से हम आपकी आश कब पूरी करेंगे? सारी दुनिया हमको देख रही है, बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ तो मेरे पास आओ। दुखियों की चीत्कारें क्या तुम तलक ना आई, क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई, अरे अब कुछ तरस तो खाओ, उनको दरस दिखाओ, अब मुझको ना बुलाओ तो मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया, अरे मेरे समान बनकर वादा तुम भी निभाओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक, अब देर न लगाओ, आओ वतन सजाओ। तो ये बाबा बुला रहे हैं, सारी दुनिया हमें देख रही है, और बाबा मुझे नींद आ रही है, मुझे तो अपने ऊपर लगता है कि बाबा मैं क्या कर रहा हूं, आपको पल पल याद करूं, आपके प्रेम में डूबा रहूं, इसके बदले में मुझे नींद आ रही है। अपनी इस स्थिति को देखकर हमारे प्रेम के आंसू आए, बाबा के प्रेम के आंसू आए, अपने रियलाइज तो करें। हम निरंतर योगी बनने के लिए, हम विश्व को परिवर्तन करने वाले, प्रकृति को भी पावन बनाने वाले, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें 8 घंटा का योग तो कम से कम करना चाहिए हर एक को। क्यों? क्योंकि 8 घंटे से अधिक की जब याद की यात्रा हमारी होती है तब हम किसी को देने की अवस्था में होते हैं। पहली बात, 8 घंटे तक की याद की यात्रा यानी आपने कमाया और खाया, अब इसके आगे आती है तो आप दुखी अशांत आत्माओं को देने की स्थिति में आते हैं, भिखारी आत्माओं को देने की स्थिति में आते हैं, दुखी आत्माओं को सहयोग देने की स्थिति में आते हैं, विनाशकारी आत्माओं को प्रेरणा देने की स्थिति में आते हैं, और विनाश होगा तो तत्वों को प्रेरणा देकर सफाई करेंगे, जो इविल सोल्स भटकेंगी, वातावरण में भटक रही हैं, उनको आप ठिकाना दे सकेंगे। और उन जब 8 घंटे से अधिक का योग होगा, आप शक्तिशाली बनेंगे, तो जो आत्माएं सामने आएंगे उनके प्रभाव से आप बचेंगे, उनको तो मुक्ति देंगे और आप स्वयं अपनी रक्षा कर पाएंगे। जब इससे भी अधिक योग होगा तब आप सत्व प्रधान प्रकृति की रचना करेंगे, फिर आप सत्व प्रधान गर्भ महल तैयार करेंगे, फिर आप विष्णु मास्टर विष्णु बनकर के नई दुनिया की पालना करेंगे। इन सब को करने के लिए हमारे पास याद की पूंजी होनी चाहिए। आप कोई कहे 1 घंटा 2 घंटा योग करने से काम चलेगा, ऐसा नहीं, अब हमें निरंतर योगी बनना है। निरंतर निरंतर योगी कौन बनेगा? जो निरंतर स्नेही है, जो निरंतर स्नेही है वही निरंतर योगी। निरंतर स्नेह में समाना, बाबा की स्नेह में रहे कि उसको याद करने की जरूरत ना हो, कोई मशीन नहीं कि 1 घंटा बैठे चलो 1 घंटा और बैठ ले, नहीं। आज का अव्यक्त इशारा आपने पढ़ा, सुना आपने क्या था अव्यक्त इशारा? कि हम बाबा के साथ कंबाइंड है, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता है, मैं उसके बिना नहीं कर सकता हूं। जी हाजिर हुजूर, मेरी एक आज्ञा पर बाबा हुजूर हाजिर हो जाता है और हम भी बाबा की आज्ञा हुई हुजूर हाजिर, हम भी इस तरह से श्रेष्ठ संकल्प से हम अपने आप को शक्तिशाली बनाए। तो आज से सवेरे जब भी आप याद में बैठे, ऐसे आसन में बैठे, देखो मैं आपके पास आपके सामने घंटों तक बैठता हूं इस आसन में, ऐसे सामने बैठता हूं और आप सामने देखें, बाबा को देखें, पहली बात स्वमान ले ले कि मैं मेहमान हूं और महान हूं, और ऐसे बैठे मुद्रा में, फिर बैठे एक बार मुद्रा में बैठे, हाँ जी इसी मुद्रा में बैठे, मैं शिव शक्ति हूं, बोलिए मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, मेरी पवित्रता की किरणों से पांचों तत्व भी पवित्र बन रहे हैं, पवित्र दुनिया की रचना हो रही है, मैं पवित्रता का अवतार हूं। नीचे करें, इस तरह का उठते ही चारपाई से उतरते हुए इस अनुभव के साथ अपनी दिनचर्या का आरंभ करें कि मैं चारपाई से उतर नहीं रहा हूं बल्कि मैं वतन से उतर रहा हूं। सवेरे आंख खुली, रात को बाबा के पास गोद में बाबा के पास बैठे, बाबा ने कहा बच्चे कहां आए हो, रात को गए बाबा की गोद में सो गए, सवेरे बाबा की गोद में जगे तो पहली दृष्टि में यह रहे कि जैसे बाबा ने मुझे जगाया, बाबा ने मुझे मुकुट पहनाया, मुझे तिलक दिया, ताज दिया और अपने मुझे गोद में बिठाकर यहां शाबाशी दी और कहा जाओ बच्चे आज मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी जगह पर तुम जाओ, और आज मेरा अवतार हो रहा है, मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं बल्कि वतन से उतर रहा हूं। और थोड़ी देर के लिए अगर इस पोजीशन में आप अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, मैं अवतार हूं, तो आप देखेंगे आपके पांच बारी संकल्प ले ले, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, 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 ऐसे पांच बार ले ले तो आप देखेंगे कि ये आपका संकल्प इतना बड़ा काम करेगा कि आपकी दिनचर्या को शक्तियों से अनुप्राणित कर देगा, शक्तियों से भर देगा, आप बहुत ही शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो स्वमान ले ले, पहला आपको निर्माण बनने के लिए स्वमान लेना है, और जितने स्वमान के संकल्प हैं उनको दोहराएं बीच में, ये स्वमान आपको निर्माण बनने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि मान सबको चाहिए, अगर आप स्वमान में नहीं रहेंगे तो आपको बार बार अपमान होगा, आप मान पाने के लिए कहीं न कहीं भागते रहेंगे। आपके घर में क्या है, आप कोई मेहमान आया तो आपके मन में आता है मेहमान आए, और आप दोनों परिवार वाले पूरे मिलकर के घर को बनाया, होटल बना लिया, खाना बनाया, इतना अच्छा अच्छा बनाया, व्यंजन बनाया कि चाहे कर्जा भी लेना पड़े, ये इनसे सामान लो, उनसे सामान लो, खूब आपने भोजन बनाया, तैयारी किया, आपने क्यों इतना किया कि जब खाने वाले खाएं कहें वाह क्या खाना बनाया है, क्या अजीज भोजन बनाया, कितना अच्छा है, जायकेदार भोजन आपने बनाया, घर जो भी खाए वो कहे क्या खाना, बस केवल इतने इतना के लिए, कि आपने भोजन कितना अच्छा बनाया, आपने उसमें टाइम भी लगाई, शक्ति भी लगाई, एनर्जी भी लगाई, पैसा भी लगाया, लेकिन बदले भी क्या हुआ, आपने उसकी जीभ को और तेज कर दिया। उसके मन में आया कि बार बार निनाए इनके पास जाएं और इनका भोजन खाने को मिले, कितना अच्छा भोजन बनाया। इसके बजाय आप सरलता से, सादगी से जो खाते हैं वो बना के प्यार से खिलाइए, तो खाने वाले का भी दिल खुश हो जाए और आपका टाइम भी मिल जाए, मनी भी, सब चीज बच जाए। तो इसलिए हमारा मन घड़ी घड़ी घूमता रहता है। दिन भर में हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे यही भाव होता है कि कोई कहे कि ये तो बहुत अच्छी सेवा की आपने, आपके अंदर बहुत अच्छा गुण है, आपने क्या गाना लिखते हैं, आप क्या गाना गाते हैं, आप बड़ा अच्छा क्लास कराते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप बोलते बहुत अच्छा है। हमारे मन में कहीं न कहीं प्यार से बना होता है। और दुनिया में भी कहते हैं ना कि प्यार का प्यासा होता है हमारा मन, इनसे प्यार मिले, उनसे प्यार मिले, कहीं से भी मिले कुछ तो मिले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही है। तो हमारा प्यार जो है, मन जो है, वो प्यार के पीछे बेताब रहता है, भागता रहता है, बजाय उसके कि हम सबको प्यार बांटे, प्यार परमात्मा के प्यार से समा जाए पहली दृष्टि में, जो किसी के भी प्यार की आवश्यकता ना रहे। ठीक है, तो स्वमान ले ले और स्वमान से अपने आप को भर ले, सवेरे स्वमान से अपनी दिनचर्या का आरंभ करें। दूसरा जो निर्माण बनाता है वो संकल्प निर्माण ये बनाता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं करण करावन हार हूं, बाबा ये कार्य करा रहा है, बाबा का घर। कई बहनें, कई भाई ये पूछते, भैया घर में बड़ी समस्या है, घर के लोग बहुत बिगड़ते हैं, बहुत तंग करते हैं, बड़ी समस्याएं। उन समस्याओं के पीछे कारण कुछ और नहीं होता है, उन समस्याओं के पीछे हमारा मोह होता है, हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। कार्मिक अकाउंट क्यों बनते हैं, जब हम कर्म बंधन बनाते हैं, कर्म संबंध के बजाय कर्म बंधन ही बन जाते हैं। कर्म बंधन क्या, भैया क्या करूं, बेटा है ना, सुनना पड़ता है, करना पड़ता है, चलना पड़ता है, जहां पर मजबूरी आई वहीं आप कर्म बंधन बने। बल्कि इसके जगह क्या होना चाहिए, कर्म संबंध हो। कर्म संबंध, संबंध का मतलब है कि बाबा ने निमित्त बना करके मां के रूप में मुझे भेजा है, लेकिन इनकी मां असली तो परमात्मा है, मैं तो केवल निमित्त हूं। तो रोज सवेरे आपका जब अवतार हो, आप अपने परिवार में आए तो ये देखें कि परिवार मेरा नहीं है, और अपने सामने देखें कि मैंने फरिश्ता का ऊपर तो मां का मास्क पहना है, लेकिन अंदर से मैं फरिश्ता हूं। ये ना तो मैं किसी की मम्मी हूं, ना किसी के डैडी हूं, ना किसी के बाप हूं, ना कोई मेरा बेटा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, निमित्त मात्र हूं, इनकी इनका पालनहार हुआ है। मुझे याद है मेरे लौकिक पिताजी कभी कभी बात में करते थे, जब शुरू में होते थे तो ज्ञान मास्टर को हम बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे पिताजी कहते हैं कि अगर मैं न रहूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरे जाने के बाद तुम लोग भूखे मर जाओगे। तो बोलते थे उनको, बोलना अपने पिताजी को कि पिताजी ऐसा करना कि कहीं हम भूखे न मर जाएं, आप वतन से जाके ना बोरा 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 भर करके भेज देते रहना। फिर कोई कोई माताएं भी कहते, भैया क्या करूं, घर में ना रहूं, एक दिन ना रहूं तो घर जंगल हो जाए। तब उसे कहते हैं, माताजी ऊपर जाना नहीं जब बुलावा आए, क्योंकि तुम चली जाओगे तो जंगल के बजाय मंगल कौन करेगा, तो आप वहां जंगल ना हो जाए मंगल करने के लिए तो जरूर आना। तो कहीं कहीं हमारा जो अहम भाव है, हमारा जो अहंकार है, अपने आप को हम मुखिया समझ लेते हैं, जिम्मेदार समझ लेते हैं, और उस जिम्मेदारी के चक्कर में निमित्त भाव भूल जाता है और वो हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए दूसरी बात, कदम कदम पर ये ध्यान रहे कि मैं करण करावन हार हूं। तीसरा, हमारे अहंकार से शून्य होने के लिए सारे हमारे कर्तापन का जो भान है वो है मैं और मेरापन, मैं और मेरापन, यही हमारे सारे ही दुर्गुणों की जड़ है। अगर हम मैं की जगह पर दिन भर में बाबा 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 यही कहना सीख जाएं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाबा बाबा कहते हैं बच्चे, जब प्रदर्शनी समझाओ तो एक बार नहीं हजार बार बाबा बाबा करो तो आप बच जाए। बाबा कहते हैं बच्चे कमेटी बनाते हैं, कमेटी में उसमें अपना मैं करते हैं, तो बाबा राय देते हैं बच्चे कमेटी कितना भी बनाओ भाइयों की, उसमें एक बहन को बिठा दो, कहीं पर भी हो इन बहनों को आगे बढ़ाओगे तो आप बच के रहोगे, और जहां भाई भाई रहे वहां पर आपस में कुछ न कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ न कुछ होता रहेगा, इसलिए इनको निमित्त बनाओ। आज से यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर अपमान की फीलिंग ना आए, हम निर्माण बन के रहें, तो हम सम्मान देना सीख जाएं, सम्मान देना सीख जाएं। संकल्प करें कि इन बहनों को, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, आज से हमें इन बहनों का सम्मान करना है। मैंने अनुभव किया अपने जीवन काल में, मैं पहली प्राथमिकता से जब मैं मधुरवाणी ग्रुप की शुरुआत हुई तो यहां ओम शांति भवन में गीत गाते थे, बाबा आते थे, बाबा की मुरली के बाद मुरली की कविता बनाते थे, गीत बनाते थे, हम दो भाई होते थे, कोई बाजा वजा होता नहीं था, सुरम बाजा वजा देखे तो डर लगता, कुछ आता जाता तो था नहीं, तो हम दोनों मिलके गाते थे, लोगों से तालियां बजवाते, सब ताली बजाते थे, यहां तक कि जब बाबा शांति वन में आए और बहुत बड़ी महफिल थी टेंट में जब बाबा आए पहली बार, तभी वहां गाते थे, अभी तो आए यहां हजारों आगे चलाएंगे लाखों में, देख रहे हैं हम वो नजारा बाबा तुम्हारी आंखों में, तो सब ताली बजाते थे, खूब डांस करते थे। तो शुरू शुरू में दो ही जने थे, लेकिन मैंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में, बहनों की संस्था में हम दो चार भाई गाते हैं, गीत गाते हैं, तो हम खग्गे कहां से आगे, खग्गे बाबा कहते हैं ना, खग्गे जिसे बन जाते हैं, तो कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हम भाई आकर के बहनों की संस्था में बहनों के बिना जाएं। फिर मैं बहनों को आगे बढ़ाकर बहनों को साथ लेता रहा, बहनों को लेने के लिए इनके डिपार्टमेंट से पूछो, उनको छुट्टी दिलाओ, उनका इंतजार करो, फिर बहुत कुछ करना पड़ता था, लेकिन मैंने प्राथमिकता की कि बहनों के बिना मुझे मधुरवाणी ग्रुप को नहीं बनाना है। फिर मैं कहता बहने आप भी गाओ, हाँ ताली बजाए, अभिनंदन कीजिए, बहुत बड़ी बात थी। फिर मैं सोचता था कि बहनें ही करें, तो बहने कहते नहीं भाई हम आपके बिना नहीं करेंगे, हम आपके बिना नहीं करें, चलो भाई बहनें हैं भाई हैं दोनों मिलके करते हैं। आज भी जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें बहनों को लेकर उनको साथ, और कभी भी बहनों को झगड़ा नहीं करना है, बहनों को कभी तकलीफ नहीं देना है, किसी बहन का अनादर नहीं करना है, ये लक्ष्य चलता हूं। आज तक 45 साल मधुबन में हो गए, अभी तक भी मधुरवाणी ग्रुप और उसके साथ हम आपके सामने इसी बल पर चलते हैं कि हम सदा सुरक्षित रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, आगे बढ़ा के रखते हैं, इसलिए सबका प्यार मिलता है, सबका सम्मान मिलता है। इसके बीच में कितने आए चले गए, जहां भी अहंकार आया, जहां अभिमान आया, कर्तापन का अहंकार आया। अभी कहने में तो आता है 5000 गीत लिखे, लेकिन आज सच बताऊं तो इनकी संख्या 8-10 हजार होगा, 5-6 हजार तो गाना हमारे पास लिखा रखा है, और रोजाना एक एक दो दो गाने रोज ही बन रहे हैं अपने आप, बनाने की भी कोशिश नहीं, बाबा के साथ बैठता हूं, आज प्रोग्राम है करना ही है, अभी आ रहे भी, कल ये प्रोग्राम हुआ, कल इनका प्रोग्राम हुआ, राजनाथ जी कल परसों आने वाले हैं, उनका वेलकम करेंगे, अभी तक कुछ सोचते नहीं, उसी दिन सोचते हैं, उसी दिन बनाते हैं, एक घंटा पहले रिहर्सल करके ग्रुप लेकर ट्यून बना के तर्ज बना के गा लेते हैं और आगे की सोचने लगते हैं। तो ये बाहर के लोग सिंगर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, कहते हैं भाई जी हम भी आपके साथ गाना चाहते हैं, फिर हम उनको जब बुलाते कहते हैं सतीश भाई कब प्रैक्टिस करेंगे, मैंने कहा अभी करेंगे प्रैक्टिस और अभी गाएंगे, नहीं भैया हम तो नहीं गाएंगे। महेंद्र कपूर जी आए यहाँ पर सुविधा में बैठे, ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन था, मैंने गीत बना के उनको जाके दिया, महेंद्र कपूर जी थे और उनकी युगल थी, सुखधाम में ठहरे थे, तो मैंने कहा ये गीत बनाया है भाई जी, और मैं सतीश भाई हूँ जिन्होंने तुमसा हसीन बाबा जो आपने गाया है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है और तुम्हारा प्यार वो बाबा सुखों का सार देता है जो आपने गाया है वो हमारे लिए कहा आपके लिखे हैं। फलाना तो कहता था मैंने लिखा है। मैंने कहा आपको बताते सतीश भाई तो कौन जानता सतीश भाई, इसलिए बोल दिया होगा। कहा तो अच्छा आपने लिखा, बड़ा अच्छा गाना लिखा। वो तो उसको 19 ट्रैक में गाया उन्होंने, तुम सा हसीन बाबा। उसे बराबर मिलते थे, कई बार मिलते थे, बहुत बातें होती थी। तो मैंने कहा कि ये हॉस्पिटल के लिए गीत लिखा है महंत कपूर जी, आप इसको गाएं तो बहुत अच्छा है। कहा सतीश जी सच बताऊं ये आप गाइए, हमसे नहीं गाया जाएगा, हमको तो डायरेक्टर जैसे कहता है ऐसे गाओ वैसे हम गाते, बना बनाया मिलता है। और हम कोई नई महफिल में कोई नया गाना नहीं गाते, हमको तो जो पुराना गाना है वही गाते। आपको एक काम कहता हूं, आप मेरे लिए चार लाइन ये मेलोडी बना दीजिए, मैं चार लाइन बोल करके सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है वो मैं गाना गा दूंगा। मैंने कहा अच्छा। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं इस काम को नहीं करते हैं जो बाबा सहज ढंग से ये सब काम कराता है। जो यहां बाबा के एक एक बच्चे यहां जो जैसे हमारे वीडियो वाले भाई हैं हमारे वो रमेश भाई, रमेश भाई जरा खड़े हो जाए तो, रमेश भाई खड़े हो तो, ये हमारा रमेश भाई है, इसके अंदर बहुत बड़ी कला है, कवि भी है, बाजा भी बजा लेता है, कविता भी सुनाता है, उसके अंदर तो इतना कला है, लेकिन फिर भी पीछे बैठता है सबके साथ, भोजन भी खिलाते हैं। तो कितने बाबा के एक एक बच्चे बैठ जाएं, बाबा के एक एक बच्चे उनके अंदर जितनी कलाएं हैं वो कोई प्रोफेशनल नहीं रहे। आज देखते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट, हम रविंद्र जैन जी के साथ रहे, हम कभी प्रदीप जी के साथ में रहे, मैं उनको भरत व्यास जी को मैं मिला था, इनके साथ रहे, हमको कहते थे कभी प्रदीप जी सतीश जी आप तो देवता हैं। हम तो बहुत छोटे थे लेकिन हमारा स्वभाव देख करके वो देवता बोलते थे। तो इतने बड़े बड़े महान कलाकार जिनको सारी दुनिया याद करती है वो हमारे बाबा के बच्चों को अगर देवता कहें तो किसकी बहादुरी है, वो बाबा की बहादुरी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बार बार उसके गुण गाने का मन करता है, उसको धन्यवाद करने का मन करता है। वो क्या नहीं कराता है, बड़ा कारसाज है, उसकी महिमा अनंत है। हमारे यहां जब भी आप काम करें तो मुझे एक ख्याल में आता है कि मधुर वाणी ग्रुप को सामने दिखा करके बाबा यहां बैठा है, बनवाता है सामने, पहले तो यहां आंगन में बैठ कर बाबा आओ बच्चे आओ अपने मधुबन घर में विश्राम करो, वहां पर लिखा है बोर्ड में, आओ बच्चे मीठे बच्चे अपने मधुबन घर में तपस्या करो। अभी लिखा है तपस्या करो, तपस्या कोई घर में तपस्या थोड़ी होती है, वो तपस्या वर्ष में किसी ने लिखा दिया। आज भी मैं देखता हूं तो शुरू शुरू के बोल बाबा के, आओ बच्चे मीठे बच्चे अपने मधुबन घर में विश्राम करो। अब इसमें जो मिठास है, जो प्यार है कि आते ही बाबा के बोल सुनते ही जैसे सारे जन्म जन्म की जो थकान थी जैसे दूर होगी, खत्म हो गई। तो बाबा की ये प्यार आज भी कानों में गूंजते हैं। पहले बाबा साकार में सामने बैठकर सामने खड़े होकर आपका वेलकम करते थे और आज बाबा मधुर वाणी ग्रुप को सामने रखकर आज भी आपका वेलकम कर रहे हैं मधुबन में, जामनगर को और सूरत वालों को आपका स्वागत करते हैं। तो बस ये याद रहे, आई एम नॉट डूइंग माई ड्यूटी, मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूं, बट ये भी आई एम नॉट डूइंग डांस, मैं डांस कर रहा हूं ये भी ध्यान में रहे, बल्कि ये भान रहे इट इज बीइंग डांस बाई मी। क्या याद रहे, इट इज बीइंग डांस बाई मी। वो नचा रहा है ऊपर बैठा कठपुतली जिसे होता है ना खेल, तो क्या करता है पर्दे के पीछे बैठता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे करता है और जो धागे होते हैं ना धागों से ऐसे ऐसे करता है और नीचे लोग देख रहे हैं, ऊपर से ऐसे करता है और नीचे लोग देख रहे हैं, गुड्डे गुड़िये वो नाच रहे हैं ऐसे है? ऐसे नाच रहे हैं, पूरा खेल चल रहा है। तो ऊपर वाला बैठ करके वो नचा रहा है और हम बहुत अच्छा नाच रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं और वो सब लोग जान रहे हैं कि वाह मधुर वाणी क्या गाना गा रहा है, क्या गाना गा रहे हैं, क्या गीत गा रहे हैं। तो ऐसे ही जितना हमारे अंदर ये भाव हो, आई एम नथिंग बाबा यू आर एवरीथिंग, आई एम नथिंग बाबा यू आर एवरीथिंग, जितना जितना हमारे अंदर ये भावना आती जाएगी उतना उतना ही हम निर्माण बनते जाएंगे, निमित्त बनते जाएंगे, अपने हर कार्य करेंगे, हमें कभी अहंकार नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। और अहंकार यही है जो भगवान से हमको दूर करता है। इसलिए कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूल, है ना। इसलिए अगर बढ़ना है आगे, तो जब भी वो गीत मैं जब लिख रहा था, महंत कपूर जी बैठे थे, बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, वो याद प्यार हमें देते। तो कहते थे इसमें बलिहारी क्या है, और पूछते थे, मैं बताता था इसका मतलब। ये कहने का मतलब ये है, कभी भी अपने कृति का, अपनी बात का अहंकार ना हो, इसके लिए कदम कदम पर यह अनुभव करते चले कि बाबा बढ़ा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा सिखा रहा है। एक बॉम्बे की बहन मुरली सुनाती है, और मैं बैठा सुन रहा था, तो मैं देखता हूं कि हर लाइन के शुरू में कहते हैं बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, हर लाइन के पहले। तो मैंने कहा ये तो बाबा कहते इतनी बार कहेगी तो मुरली तो डबल हो जाएगी। लेकिन जब भी देखा मैंने कि वो हर लाइन के पहले कहे बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो मुझे इतना ताजुब हुआ, इतना अच्छा लगा कि देखो इसने कितना पक्का कर लिया है कि हर लाइन से पहले कहना है, सबको बाबा की याद दिलाना है। तो बाबा की याद दिलाने के लिए इसने खुद इतना याद किया है कि हर लाइन से पहले बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो बाबा का सब जोड़ जुड़ता है। तो एक बार नहीं, हजार बार बाबा कहें, तब हमारा कल्याण होगा। बाबा बाबा कहते रहें, बढ़ते चलें, हम अपनी निमित्त और निर्माण बन करके हम संपूर्णता को प्राप्त करें। जिस तरह से बाबा और दादियों ने हमें निमित्त बनने का पाठ पढ़ाया, हम उस निमित्त और निर्माण बन करके आगे बढ़ते रहें। आप हमेशा अपने लक्ष्य में सफल हों। हम सब मिल करके बाबा को प्रत्यक्ष करें, निमित्त और निर्माण भाव से सबको एक दूजे को सम्मान देते चले। सम्मान स्वयं को दे और स्वयं का सम्मान ले। सम्मान हम सबका करते चले और सबका सम्मान लेते चले। प्रकृति का हम सम्मान करें, प्रकृति का हम सम्मान पाए। हम परमात्मा का सम्मान करें और परमात्मा से सम्मान पाए। यही दुआ देना है, यही दुआ लेना है। आप चिंतन कीजिएगा, आपको होमवर्क देता हूं, आप विचार कीजिएगा, स्वयं का सम्मान करना क्या है और स्वयं का सम्मान पाना क्या है। सबका सम्मान करना क्या है और सबका सम्मान पाना क्या है। प्रकृति को सम्मान देना क्या है और प्रकृति का सम्मान पाना क्या है। परमात्मा का सम्मान देना क्या है और परमात्मा को सम्मान पाना क्या है। इसलिए आगे रहें, बढ़ते चलें, इस संकल्प के साथ सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। मन है और मन विमल हो जाएगा, और मन विमल हो जाएगा। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभकामनाएं हो, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। एक पांच स्वरूपों का अभ्यास है, वो प्रायः हर क्लास में बताता हूं, दो मिनट का है, आप उसको कर लें। निरंतर याद करने के लिए निरंतर स्नेही बन जाए, निरंतर सहयोगी बन जाए, निरंतर स्मृतिधारी बन जाए, निरंतर सर्व संबंधों से बाबा को याद करें, निरंतर बाबा को अपना साथी बना लें, और आजकल जैसे कंबाइंड ग्रुप का है वैसे करें। एक अभ्यास आपको देता हूं जो आपको निरंतर योगी बनने में बहुत सहयोगी बनेगा। ऐसे हाथ करें, यहां फील करें कि बाबा मेरे सिर पर, यहां बाबा की लाइट शिवबाबा है और शिवबाबा का लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है, चारों तरफ अंधेरा है तो भी मैं बाबा की लाइट में चल रहा हूं, मैं बाबा की लाइट में हूं, बाबा किरणें और मैं आत्मा। ऐसे करें, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा। ये संकल्प निरंतर होता रहे, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी कर रहे हैं, बस इतने ख्याल करें बीच बीच में कि मेरे बाबा मेरे सिर पर हैं, उनकी छत्रछाया में मैं चल रहा हूं, सदा सुरक्षित हूं। एक तो ये, दूसरा बीच बीच में जब भी मौका मिले तो अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखें, अपनी आंखों को कम करें और फील करें, खुदा दोस्त की हम पे है छत्रछाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रिया कर्मचारी हमारी, भ्रकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, भ्रकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। नीचे करें हाथ, ये बीच बीच में 10 बार 20 बार जब भी मौका मिले तो अपना दाहिना हाथ सिर पर रख करके इस संकल्प के साथ कि बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मैं सदा सुरक्षित हूं, बाबा की सुरक्षा मुझे मिल रही है, इस अनुभव के साथ अपनी दिनचर्या बिताएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरी बात, बैठ जाएं ऐसे फिर और संकल्प करें। पांचों स्वरूपों का अभ्यास बहुत अच्छा है, आप भी कर ले मेरे साथ, आप भी बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। कीजिए, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।
बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई जी, आपने कैसे हम निमित्त बन करके अपने कार्यों को कर सकते हैं बहुत ही सहज उपाय बताए। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो भी हमारे में कला है, जो भी कुछ गुण है, विशेषता है, वास्तव में परमात्मा देन है, हमारी नहीं है। तो उसको आपने प्रैक्टिकल में किया है। दुनिया में भी लोगों में बहुत विशेषताएं, कलाएं, गुण होते हैं, लेकिन वो उन्होंने अभ्यास करके, सीख करके, पैसा खर्च करके वो सब सीखे होते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के बच्चों में जो थोड़ी बहुत भी कला होती है, तो उसको जब वो निमित्त बन करके ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, तो बाबा उसको हजार गुणा बढ़ा देता है। वो आपके जीवन से हम देख रहे हैं, और यज्ञ में ऐसे हमारे अनेक भाई बहने हैं। सेवा केंद्रों में भी थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर ही चलाना आता होगा ना किसी भाई को, और सेंटर में वो कहेगा बहन जी हाँ ये फ्यूज मैं लगा देता हूँ, ये बल्ब मैं लगा देता हूँ। तो बाबा उसके अंदर इतनी कला भर देता है कि वो सेंटर में एक विशेष भाई हो जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसे हैं। तो अपनी कोई भी छोटी मोटी जो भी कला है, उसको यदि हम बाबा की सेवा में बहुत निर्माण चित्त होकर के लगाते हैं, ये ना सोचिए तो छोटा सा काम है, ये मैं कैसे करूं, नहीं, ये एक विशेष हो जाता है, और वो विशेषता फिर सभी के द्वारा सम्मान प्राप्त कराती है, स्वाभाविक है ये। इस विशेषता में बाबा के बच्चों के अंदर एक दिव्यता भरी है, जो लोगों के अंदर कला होते हुए लेकिन दिव्यता नहीं होती है, थोड़ा उनको अपनी कला का अभिमान भी होता है, लेकिन बाबा के बच्चों में उस कला का अभिमान नहीं होता है, निर्माणता होती है, इसलिए वो कला विशेष बन जाती है। इसीलिए तो बड़े बड़े गायक भी उनको देव कह करके मानते हैं। तो इसी प्रकार से ही बाबा की प्रत्यक्षता हम सभी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आज का सेशन, आप सभी ने क्रिएटिविटी भी की, कितना सहज रीति से आप सभी को सिखा दिया, 500 रूप की यात्रा भी कैसे करनी है, और गा गा करके भी गीत संगीत के द्वारा योग कैसे करना है। परंतु अब घर के लोग कोई ऐसे ज्ञानी ना हो और आप ऐसे ऐसे करने बैठ जाएंगे ना, समय देख करके, अवसर देख करके काम करना सीख लिया वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो कहेंगे इसको हुआ क्या है, अभी तक तो ठीक थी, चुपचाप बैठ के करती थी, अब ये आबू से क्या सिखाई। एक आपको छोटी सी बात बताऊं, एक बंगाल की माता थी, तो मुरली सुनते थे बंगाली लोगों को, पूरी हिंदी तो अच्छी तरह से नहीं आती है, और वो तो पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं थी, तो इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो मुरली में बाबा ने कहा बच्चों को अभी हाई जंप देना है। अब उसको तो समझ नहीं आई ये हाई जंप क्या भला होती है। उसने सोचा कोई पुरुषार्थ इस प्रकार का होगा, कोई योग इस प्रकार से होगा, तो अब पूछे किसको। उसने जो है घर में जाके अपने पोते से पूछा बेटा हाई जंप क्या होता है। उस बच्चे ने कूद कूद करके बता दिया, अम्मा ये होता है। अच्छा, अब बाबा ने मुझे ऐसा योग करने को कहा है। अब वो बंधन वाली माता थी, घर में कोई क्लास में आता नहीं था, ज्ञान सुनता नहीं था, जैसे तैसे उसको छुट्टी मिलती थी, अमृत वेला बहुत पक्का था उसको। अब वो अमृत वेले उठी दूसरे दिन, और उसने तो कूदना शुरू कर दिया। अब उसके पति ने देखा कि ये क्या कर रही है। उसने कहा, भाई तुम ये क्या कर रही हो? कहती है, मैं हाई जंप वाला योग कर रही हूं, बाबा ने मुरली में कहा है। तो कहा, कल से तेरा सेंटर पर जाना बंद, ये हाई जंप वाई जंप या नहीं चलेगा। अभी तक ठीक था तो चुपचाप योग करती थी। तो मुझे वो याद आया, तो बहुत सुंदर तरीका बताया भाई सब ने। लेकिन घर में सभी आते हो तो सब साथ में बैठ के करेंगे, बहुत अच्छा है। घर में कोई विरोधी हो तो अकेले कमरे में जाकर के करना, ठीक है। ओम शांति।